الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते हैं बारुल कुरान जिल्द नंबर 5 से, जो आयात अभी तिलावत की गई आयत नंबर 88 से 92 तक, 88 से 92 तक हैं। और बारुल कुरान से अंदर हम इनके इनके खुलासे तफसीर को पढ़ रहे हैं पेज नंबर 134 के ऊपर से। तो पीछे का हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो अपने वालिद साहब का यानी याकूब अलैहिस्सलाम का हुक्म लेकर के वापस अजीज मिस्र के पास आए। हुक्म ये था कि तुम जाओ और बुनियामीन और यूसुफ दोनों को तलाश करो। तो इन्होंने यही सोचा जो अकल का तकाजा था कि भाई बुनियामीन के बारे में हमें पता है कि वो कहाँ पर है, तो हमें वहां से इस सर्च मिशन को शुरू करना चाहिए। ठीक है, यूसुफ का पता नहीं है तो वो फिर बाद में देखेंगे, अल्लाह ताला कोई आसानी फरमाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। जिस चीज का हमें पता है तो वहां से काम शुरू करें, तो आसान चीज से काम शुरू करते हैं, फिर मुश्किल चीज को अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं अगर उसकी मर्जी होती है, और अगर नहीं होती मर्जी तो मुश्किल चीज फिर मुश्किल ही रहती है। ठीक है, तो ये जब अजीज मिस्र यानी जो कि हकीकत में यूसुफ अलैहिस्सलाम ही थे उनके पास पहुंचे, तो ये सारी बातचीत हुई। इन्होंने उनसे जाकर के कहा कि हमें बहुत तकलीफ और बहुत मुश्किलात ने छू लिया है, और हम आपके पास यानी नाकिस पूंजी लेकर के आए हैं, बस आप हमारे ऊपर सदका कर दीजिए। यानी अपने आप को जो है ना बहुत ही कमजोर और यानी मुश्किल हालात में घिरा हुआ बना करके अजीज मिस्र के सामने पेश किया उनकी हमदर्दियां हासिल करने के लिए। ठीक है, अपने आप को कमतर साबित किया, कमजोर साबित किया, ताकि सुनने वाले के को रहम आ जाए। ठीक है, जैसे कि कोई फकीर होता है ना, वो जब किसी मांगने किसी के पास मांगने के लिए जाता है तो वो अकड़ दिखा करके नहीं जाता। ठीक है ना, वो यानी अच्छे कपड़े पहन करके और अच्छे जो है वो सूट बूट के अंदर और ऐसे नहीं जाता, बल्कि अपने आप को जो है वो बहुत ही यानी फकीर की सूरत बना करके जाता है ना। ठीक है, तभी फिर देखने वाले को उसके ऊपर रहम आता है और फिर वो उसको कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। सही, तो इन्होंने भी वही कॉमन सेंस जो है वो इस्तेमाल किया, और साथ साथ जो है ना वो यानी जजा का भी जो है वो याद दिलाया कि इन अल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, अगर आप सदका करेंगे हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खैर अता फरमाएगा। ठीक, जैसे कि इस्लामी दौर के अंदर जब कभी कोई फकीर सदा लगाया करता था ना, तो वो गलियों में घूमते हुए सिर्फ यही कहा करता था कि क्या है जज़ल्लाहु, क्या है क्या है क्या क्या था वो, अभी क्लास में पढ़ा भी था कि क्या अल्फाज सहन में नहीं आ रहे कि तुम्हारी जजा जो है वो अल्लाह ताला के साथ है, तुम्हारी जजा अल्लाह ताला के साथ है, बस यही वो कहता था। लोग समझ जाते थे कि ये कोई मांगने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने भी اجرکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہارا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اس طرح سے لوگ سمجھ جاتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو ترس آ گیا. تو ہم یہاں تک پڑھ رہے تھے, فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھی تم کو یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے, یعنی تم نے جو گناہ کیا تھا نا, تو یہ گناہ انسان کب کرتا ہے؟ جہالت کی حالت میں کرتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, لیکن اس کو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اس سے چھپ جاتی ہے نا, اس کے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے, تب ہی وہ گناہ کر سکتا ہے. اس وجہ سے ہر گناہگار جو ہے وہ دراصل جاہل ہی ہوتا ہے, بے شک کتنی بڑی بڑی ڈگریاں اس نے حاصل کری ہوئی ہوں, لیکن گناہ کرنے کے وقت وہ جاہل ہی ہوتا ہے. اگر وہ گناہ کرنے کے وقت عارف ہوتا نا تو وہ گناہ نہیں کرتا, وہ رک جاتا گناہ سے. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام نے یہی ان لوگوں کو کہا کہ جب تمہاری جہالت کا زمانہ تھا, اذ انتم جاہلون. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ یعنی تفسیرن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معروف بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ برے بھلے کی سوچ نہیں تھی. یہ سن کر پہلے تو وہ چکرائے کہ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا واسطہ. ادھر اس شروع زمانے کے خواب سے غالب احتمال تھا ہی کہ شاید یوسف علیہ السلام کسی بڑے رتبے کو پہنچے کہ ہم سب کو ان کے سامنے گردن جھکانا پڑے. ٹھیک ہے, تو ان کو خواب کے بارے میں اچھی طریقے سے پتا تھا, تو ان کے ذہن میں نا بیک آف دا مائنڈ یہ ریئلائزیشن ہمیشہ تھی کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر فوقیت عطا فرمائیں گے. اس لیے اس کلام سے شبو ہوا, یعنی جب انہوں نے کہا نا کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا, تو ان کو فوراً سے جو ہے نا وہ ذہن اس طرف چلا گیا, اور غور کیا تو کچھ کچھ پہچانا, اور مزید تحقیق کے لیے کہنے لگے کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں, اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے, یعنی باپ اور ماں دونوں شریک بھائی جو ہے وہ بنیامین ہی ہے, باقی تو باپ شریک بھائی تھے. تو یہ بنیامین کی بات کیوں یوسف علیہ السلام نے بڑھائی؟ وہ اس لیے بڑھا دیا کہ اپنے یوسف علیہ السلام ہونے کی اور تاکید ہو جائے, یا ان کے تجسس کی کامیابی کی بشارت ہے کہ جن کو تم ڈھونڈنے نکلے ہو ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ جمع ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک تو یوسف علیہ السلام آگے جو بات کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا یوسف ہونا ان کے ذہن میں پکا کرنا چاہتے تھے کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ میں یوسف ہی ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ میری اگلی جو بات ہے نا اس کے اندر ان کے لیے وزن پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اثر پیدا ہو جائے. دوسری ریزن اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو گویا کہ بشارت دینا کہ تم جو ہے نا اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہو, تمہیں تمہارے دونوں مقصد جو ہیں وہ تمہیں حاصل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو بشارت دینا تھا کہ بھئی تمہیں بنیامین بھی مل گیا اور لگے ہاتھوں یوسف بھی مل گیا تمہیں. ٹھیک ہے, ہم پر اچھا آگے انہوں نے کیا فرمایا کہ قد من اللہ علینا, کہ تحقیق کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہم دونوں کو اول توفیق صبر و توفیق صبر و تقویٰ کی عطا فرمائی, پھر اس کی برکت سے ہماری تکلیف کو راحت سے اور افتراق کو اجتماع سے اور قلت مال و جاہ کو کثرت مال و جاہ سے مبدل فرما دیا, تبدیل فرما دیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ سب تفسیرن حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ قد من اللہ علینا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا. ٹھیک ہے, احسان اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں نا تو پھر وہ چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں. چھپڑ پھاڑ کے دینا کا مطلب سمجھتے ہیں نا, یعنی خوب دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے نا ان کے اندر کمی پیشی نہیں, کمی کمی کوتاہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے راحت کو تکلیف کو راحت سے تبدیل کر دیا, افتراق یعنی یہ دونوں بھائی جو ہے وہ جدا ہو گئے تھے اس کو اجتماع سے تبدیل کر دیا, اور مال و جاہ مال کی قلت بہت مال عطا فرما دیا, عزیز مصر بنا دیا, اور جاہ جو ہے یعنی منصب و مرتبہ بھی عطا فرما دیا. ٹھیک ہے, جاہ و منصب کہا جاتے ہیں نا, یعنی صرف مال نہیں کہ جی مال تو ہے لیکن ویسے دنیا کے اندر کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, مال जरूरी तो नहीं है कि माल है तो इसका मतलब ये कि आपके पास कोई मनसब भी हो। माल भी दिया, मनसब भी दिया, ठीक है, और कसरत के साथ दिया, यानी सबसे ऊंचा जो पोजीशन थी ना, क्योंकि बादशाह तो सरगोशा नशीन हो चुका था, तो मिस्र जैसे फर्स्ट वर्ल्ड, यानी आप इमेजिन करें कि उस जमाने का जो सुपर पावर थी वो मिस्र था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिस तरह आजकल जो है ना वो अमेरिका एक सुपर पावर कहलाता है ना, तो उस जमाने की सुपर पावर जो है ना वो ये थी, और उस सुपर पावर का कर्ता धर्ता जो थे वो ये थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम। इमेजिन करें सबसे ऊंचा मुकाम दुनियावी एतबार से उस वक्त की दुनिया के अंदर जो था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिल चुका था, ठीक है। तो फरमाया कि वाकई जो शख्स गुनाहों से बचता है, अब उसूल बयान फरमा रहे हैं, जो शख्स गुनाहों से बचता है, इन्नहु मैयत्तकी, जो गुनाहों से बचता है, तकवा इख्तियार करता है, तकवा का मतलब क्या होता है, गुनाहों से बचना, वयस्बिर, और मसाइब पर सबर करता है, मुसीबतों के ऊपर सबर करता है, सबर के अंदर तकवा शामिल है, सबर के अंदर तकवा शामिल है। यहां पे दोनों चीजों को अलग अलग फिर क्यों बयान किया, ठीक है, मजीद यानी क्लेरिफाई करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, ताकीद के लिए, ठीक है ना। ये कई जगहों पे ऐसा होता है कि पहले जो है ना वो मजमुए को बयान फरमा देते हैं, फिर मजमुए के अंदर से जो एक जुज उस वक्त ज्यादा रेलेवेंट होता है या ज्यादा अहम होता है उसको दोबारा से बयान फरमा देते हैं, हालांकि वो मजमुए के अंदर, कलेक्शन के अंदर मौजूद था, लेकिन अलग से भी उसको फिर बयान कर दिया जाता है। कभी जो है वो सिर्फ जो है वो जुज को पहले बयान फरमा दिया जाता है, फिर कुल को दोबारा बयान फरमा दिया जाता है, ठीक है ना। दोनों में अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं किस वक्त किस चीज की ज्यादा इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो जुज को यानी तकवे को पहले बयान कर दिया, फिर कुल को यानी सबर को जिसके अंदर तकवा शामिल था उसको बाद में बयान किया, ठीक है। पहले भी आपसे बात हुई है ना कि हम यही हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ही अपनी किताबों के अंदर जो है वो सबर की पांच मुकामात लिखे हैं, सबर के पांच मकामात लिखे हैं, उनमें से एक मकाम जो है ना वो गुनाहों से बचना यानी तकवा इख्तियार करना है, उसके अलावा चार मकामात अलग हैं, और उन बाकी जो चार मकामात हैं उनमें से एक मकाम ये है कि मुसीबतों के ऊपर शिकवा शिकायत ना करना, ठीक है, मुसीबतों पे शिकवा शिकायत ना करना। तो यहां पर सबर से मुराद मसाइब के ऊपर सबर करना यानी शिकवा शिकायत ना करना। तो अल्लाह ताला ऐसे नेक करने वालों का अजर जाया नहीं किया करता, वो तमाम गुज़श्ता किस्सों को याद करके नादिम हुए और माजरत के तौर पर कहने लगे कि बखुदा कुछ शक नहीं, ठीक है, बखुदा कुछ शक नहीं। तो अजर को जाया नहीं किया करता क्या क्या मतलब है कि नेकी भुलाई नहीं जाती, किसी ने नेकी कर लिया ना, अब वो नेकी या तो वो खुद अपनी किसी हरकत की वजह से जाया कर देगा, अपनी किसी हरकत की वजह से, जैसे कुफर कर दिया किसी इंसान ने, खूब नेकियां करने के बाद कुफर कर दिया, अब उसकी सारी नेकियां जो है वो जीरो हो चुकी, कुफर ने सारी नेकियों को जीरो जीरो कर दिया, ठीक है, या कोई और ऐसा जतलाने वाला काम कर दिया जिससे कि की हुई नेकी जो है वो जाया हो गई। तो ये उसका अपना अमल है कि उसने खुद अपनी नेकी को जाया किया है, लेकिन अगर वो खुद अपनी नेकी को जाया नहीं करता तो अल्लाह ताला के खजाने में से उसको जाया नहीं कर दिया जाता, नामे आमाल के अंदर से उसको भुला नहीं दिया जाता, ठीक है ना, अनरिवॉर्डेड नहीं छोड़ दिया जाता। तो फरमा रहे हैं कि अजर जाया नहीं किया करता, वो तमाम गुजश्त, अच्छा, अब वो भाई जो है तमाम गुजश्ता किस्सों को याद करके नादिम हुए और माजद के तौर पर कहने लगे कि बखुदा कुछ शक नहीं, तुमको अल्लाह ताला ने हम पर फजीलत अता, ठीक है, लकद आसरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखाविन, हम पर फजीलत अता फरमा दी। अब फजीलत कितनी ज्यादा फजीलत अता फरमाई भाई, कितनी ज्यादा फजीलत अता फरमाई, ये इसका हिसाब यहां पर नहीं है, क्योंकि अब इसको आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे, तो बस फजीलत अता फरमाई ग्रेटर देन, ठीक है ना, प्रेफर्ड अपॉन, अब वो प्रेफरेंस जो है वो एक के ऊपर दो की प्रेफरेंस, ये भी प्रेफरेंस होती है, टू इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, ये भी ग्रेटर देन ही होता है, और 2 मिलियन इज ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन ही होता है ना। तो फजीलत बहुत ज्यादा अता फरमाई जिसका कि कोई हिसाब नहीं है, हम हिसाब नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के तो हर चीज का हिसाब है, लेकिन इतनी ज्यादा अता फरमाई, इतनी ज्यादा अता फरमाई कि कोई हिसाब नहीं है। तो सिर्फ जो है ना वो फजीलत का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, जिसके अंदर शामिल हो गया कितनी भी अता फरमाई हो, ठीक है। तो फजीलत जो है ना ये एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए इंसान जो है ना वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि उसकी जिंदगी का हासिल यही होता है कि उसको बस किसी तरीके से फजीलत हासिल हो जाए, बड़ाई हासिल हो जाए, बड़ा मर्तबा हासिल हो जाए, या ज्यादा माल हासिल हो जाए, या ज्यादा जो है वो बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हासिल हो जाए, ज्यादा बेहतर जो है वो गाड़ी हासिल हो जाए, ज्यादा बेहतर जो है वो घर हासिल हो जाए, घर में दूसरों से फजीलत हासिल हो जाए, माल में दूसरों से फजीलत हासिल हो जाए, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला ने ना इंसान की फितरत में फजीलत की तलब बनाई है, इंसान की फितरत में फजीलत की तलब अल्लाह ताला ने बनाई है, डाली है। इसी को जो है ना वो साइंस की लैंग्वेज में आप इस तरह से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ऐसे हॉर्मोन्स बनाए, ऐसे हॉर्मोन्स बनाए हैं या ऐसे ग्लैंड्स बनाए हैं जिनकी सिक्रीशंस जो होती है, जिनको हॉर्मोन्स कहते हैं, ठीक है ना, वो हॉर्मोन्स जो है ना ये उसके अंदर फजीलत की तड़प पैदा करते हैं, फजीलत की तमन्ना पैदा करते हैं। इसी को साइंस की जुबान के अंदर आप इन 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 हॉर्मोन्स को टेस्टोस्टेरॉन्स भी कह सकते हैं, मेल हॉर्मोन्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरॉन्स, ठीक है ना। जब बच्चा जो है, ये छोटे बच्चे के अंदर भी होते हैं, जब बच्चा जो है वो 8 साल की उम्र में पहुंचता है, उसके टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, हत्ता के 13 साल की उम्र में पहुंच कर पता नहीं शायद 800% बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब वो बच्चा जो है ना वो अपने आप को प्रोमिनेंट बनाने की कोशिश करता है, ही लाइक्स टू बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, लोग उसको तवज्जो दें, लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हों, उसको जो है वो प्यार मिले, उसको मोहब्बत मिले, उसको तवज्जो मिले, उसको जो है वो रिकग्नाइज किया जाए। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है ये मजीद बढ़ते चले जाते, ठीक है। तो ये इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने, इंसान की तबीयत के अंदर, इंसान की फिजियोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें रखी हुई, ठीक है। और इसी के लिए जो है ना वो फिर जो जो यानी शैतान के रास्ते पे चल पड़ते हैं, शैतान की बात मान लेते हैं, वो दुनिया के अंदर ये फजीलत हासिल करने की कोशिश करते हैं, दुनियावी मामलात में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो नबियों के रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं उनके अंदर भी ये तड़प होती है, लेकिन वो दीन के रास्ते में फजीलत हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी आखिरत में, आखिरत में आगे बढ़ जाने, वस्साबिकून अस्साबिकून, राइट, आगे बढ़ने की। तो ये आगे बढ़ जाने वाले, ठीक है। तो ये तो हमारी फितरत के अंदर है आगे बढ़ने की तमन्ना, फर्क ये है सिर्फ कि कोई दुनिया के अंदर ही इस फजीलत को हासिल करने की कोशिश में लग जाता है और इससे आगे वो नहीं देख पाता कि भाई मैं दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी सी है, ये तो किसी वक्त भी खत्म हो जाएगी, सारी दुनिया की फजीलत धरी की धरी रह जाएगी और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, जैसे मुझसे पहले आने वाले सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके हैं, कितनी ही उनको फजीलत मिल गई दुनिया में लेकिन सारे मिट्टी की गजा बन चुके हैं, फिरौन हो, हारून हो, फिरौन हो, नमरूद हो, हामान हो, जितने भी बड़े बड़े बादशाह थे, जितने भी बड़े बड़े फरमानरवा थे, सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके हैं, ठीक है। या ये कि हमेशा की जिंदगी की फजीलत हासिल हो जाए, ठीक है। तो वो आखिरत वाली फजीलत जो है वो फिर जो नबियों के रास्ते के वह सही मानों में चलते हैं वो आखिरत की फजीलत के लिए फिर तमन्ना करते हैं, कोशिश करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनके लिए असबाब इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। तो फजीलत किसको मिली? यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भी फजीलत अता फरमा दी और आखिरत में भी फजीलत अता फरमा दी, क्योंकि ये नबी थे, नबियों का रास्ता दिखाने वाले थे, ठीक है। तो तुमको अल्लाह ताला ने हम पर फजीलत अता फरमाई और तुम इसी लायक थे, और हमने जो कुछ किया बेशक हम इसमें खतावार थे। अब जा करके जो है ना ये तौबा की पहली शर्त पूरी कर रहे हैं, बेशक हम खतावार थे, इन्नी कुंतु इन्ना कुन्ना मिना जालिमी, इन्नी कुंतु मिना जालिमी, रब्बना जलमना अनफुसन, ठीक है ना, ये होती है तौबा। इन कुन्ना लखातीन, जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें, खातीन ठीक है ना, जालिमीन, रब्बना जलमना अनफुसना, ठीक है ना, यूनुस अलैहिस्सलाम, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जुल्म करने वाला था। यहां पर फरमाते हैं इन कुन्ना लखातीन, हम खता करने वाले थे। जब तक हो ना नदामत और शर्मिंदगी, अपने गुनाह का इकरार करना जब तक ना, उस वक्त तक तौबा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब इतने लंबे चौड़े किस्से के बाद ये जो भाई हैं, जो ईमान वाले थे, नबी, वक्त के नबी के बेटे थे, इनसे जो खता हुई थी ना, अब ये आकर के तौबा, ठीक है, इन कुन्ना लखातीन। तो इसके ऊपर इनके भाई ने क्या जवाब दिया कि हमने जो कुछ किया बेशक हम इसमें खतावार थे, लिल्लाह ही माफ कर दो, ठीक है, ये तफसीरन बीच में बयान किया कि हमें माफ कर दो, यानी आप उसके बाद माफी मांग रहे हैं। पहले अपनी खता का इकरार किया, और इकरार करने का मतलब क्या होता है कि भाई अब माफ कर दे, मुझ हमसे गलती हो गई, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम पर आज मेरी तरफ से कोई इल्जाम नहीं, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, बेफिक्र रहो, मेरा दिल साफ हो गया, ठीक है ना, मेरा दिल जो है ना ये इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हारे ही तरफ से जो है ना उसको गंदा करके रखूं, मेरा दिल तो कल्बु अब्दिल्ला अर्शुल्ला, जो अल्लाह का बंदा होता है ना उसका कल्ब तो अल्लाह ताला का अर्श होता है, यानी अल्लाह ताला उस दिल में समाते हैं। तो जिस दिल को इस बात की फिक्र हो कि मेरे अंदर अल्लाह ताला समा जाए, वो फिर इस दिल को गंदा कैसे करके रख सकता है। इनका दिल पहले भी गंदा नहीं था अपने भाइयों के बारे में, ठीक है ना, लेकिन एक था कि भाइयों से जो है वो इतना बड़ा जो है वो गुनाह हुआ था, इतना उनके ऊपर जुल्म किया था, लेकिन एक लम्हा नहीं लगा इनको उनको माफ करने। आप लोगों ने भी गालिबन सुना होगा, हमने भी सुना बचपन में, हम भी ये कहते थे लेकिन माने नहीं मालूम थे हमें। फिर जब दो दोस्तों के अंदर लड़ाई होती थी ना, दो कजन में लड़ाई हुई या दो भाइयों में लड़ाई हुई, किसी भी में लड़ाई हुई, तो कोई आता था ना बीच बचाव कराने वाला, तो कहता था कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, बचपन से ही सुनते आ रहे थे, हमें पता ही नहीं था इसका मतलब क्या होता है। सोचते थे, कभी मेरे भी जहन में आता था कि क्या मतलब लड़ाई लड़ाई माफ करो, चले जाओ मस्जिद, मस्जिद जाकर के मस्जिद में झाड़ू लगाना शुरू कर दो, अल्लाह का घर साफ करो का क्या मतलब है, क्योंकि हमें यही पता था कि वे मस्जिद अल्लाह ताला का घर होती है, तो जाओ भाई जाके मस्जिद में सफाई करो, आपस में लड़ना वड़ना खत्म करो। लेकिन अल्लाह ताला हमारे मशायख को जजाए खैर अता फरमाए, कैसी कैसी बातें साफ करके हमारे सामने बयान फरमाए कि अल्लाह का घर घर साफ करो का जो मुहावरा बना है ना इस उर्दू जुबान के अंदर, वो क्यों बना है कि जब एक दूसरे के साथ इंसान लड़ता है ना, तो उसके दिल के अंदर कीना आ जाता है, बुग़्ज़ आ जाता है, अदावत आ जाती है, नफरत आ जाती है, ये अपने दिल को गंदा कर देने के मुतरादिफ होता है। तो अल्लाह का घर साफ करो का मतलब ये था कि अपने दिल को साफ करो इन जज्बात से, क्योंकि तुम्हारा दिल अल्लाह का घर है और अल्लाह ताला गंदे घर के अंदर नहीं आते, अल्लाह ताला गंदे घर में नहीं आते। क्या मतलब आने का, अल्लाह ताला कोई फिजिकली नहीं आते, अल्लाह ताला तो जमान और मकान से जो है वो बालातर हैं, हमारे दिल के अंदर अल्लाह ताला फिजिकली कोई थोड़ी आते हैं। अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा, अल्लाह ताला की मोहब्बत गंदे दिल के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत का शौक लग जाए, अल्लाह ताला हम सबको शौक लगा दे, तो वो इस बात को याद रखे कि जब तक दिल को साफ नहीं करेगा ना, उस वक्त तक अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके दिल में नहीं आएगी। तो और यही नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, वो हदीस मुबारक भी आपने सुनी होगी कि जिसने मेरी सुन्नत से के क्या है वो, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ना कि ए नौजवान अपने दिल को साफ रखो, कि दिल को साफ रखना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो वो कयामत के दिन मेरे साथ होगा। तो वो ये दिल को साफ रखने वाली सुन्नत उस हदीस के अंदर जिक्र फरमाई नबी अलैहिस्सलाम ने। तो हमने जो कुछ किया बेशक हमसे, अच्छा ये हो गया, तो अल्लाह ताला तुम्हारा कसूर माफ करे, और वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है, तायब का कसूर माफ कर ही देता है। यानी अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते कि कोई तौबा कर रहा है फिर भी उसको माफ ना, तौबा ना करने के ऊपर माफ ना करना ये तो हो सकता है। कभी तो अल्लाह ताला बगैर तौबा के भी किसी को माफ करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के, हाँ तौबा नहीं करी लेकिन कोई और ऐसी नेकी कर दी जो अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ताला उसकी वजह से किसी के गुनाह कबीरे को माफ कर सकते हैं। गुनाह सगीरा को माफ करवाने के लिए तो बेशुमार बहाने अल्लाह ताला ने बनाए हुए। गुनाह कबीरा तौबा से माफ होता है, लेकिन अल्लाह ताला की शान से ये बईद नहीं कि किसी और नेकी को बहाना बना करके गुनाह कबीरा को भी माफ करवा दें या कर दें, ठीक है। लेकिन तौबा के ऊपर माफ ना करना ये अल्लाह ताला की रहमत से बईद, ये अल्लाह ताला की रहमत से बईद। हाँ बस तौबा की शर्त यह है कि मरने से पहले होनी चाहिए, ठीक है ना। जब मौत का फरिश्ता नजर आ गया ना उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, उससे पहले पहले की तौबा, ठीक है। तो वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है, तो इसी दुआ से ये भी मैं मफहूम हो गया कि मैंने भी माफ कर दिया, ठीक है। आगे मारिफ व मसाइल, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो चैट विंडो पे लिख करके आप पूछ सकते हैं। मारिफ व मसाइल में हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आयात मस्कूरा में यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का बाकी बाकी किस्सा मशहूर है कि उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको ये हुक्म दिया कि जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, तो उन्होंने तीसरी मरतबा मिस्र का सफर किया, ठीक है, क्योंकि बुनियामीन का तो वहां होना मालूम था। पहली कोशिश उसकी खुलासी के लिए करना थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजूद अगरचे मिस्र में मालूम ना था, मगर जब किसी काम का वक्त आ जाता है तो इंसान की तदबीरें गैर शऊरी तौर पर भी दुरुस्त होती चली जाती हैं। जैसा कि एक हदीस में है कि जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा फरमा लेते हैं तो उसके असबाब खुद ब खुद जमा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने असबाब की दुनिया बनाई है। इस दुनिया में जब अल्लाह ताला कोई काम करवाना चाहते हैं ना तो असबाब के बगैर नहीं करते, असबाब के बगैर नहीं करते, असबाब के बगैर करते हैं तो वो एक्सेप्शनल केस होता है, उसको नबी मौजूद हो तो मौजजा कहते हैं, वली के साथ वो मामला हो असबाब के बगैर वाला तो उसको करामत कहते हैं, और किसी काफिर या गुनाहगार के हाथ पे ऐसा कोई मामला हो असबाब के बगैर वाला तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। लेकिन सारे के सारे एक्सेप्शन हैं और बहुत कम होते हैं। ऐसे रूल क्या है, असबाब होंगे तब काम होगा। तो भाई असबाब कौन बनाता है, मुसब्बिबुल असबाब किसको कहते हैं, असबाब बनाने वाला, तो अल्लाह ताला ही असबाब बनाते हैं और अल्लाह ताला ही उन असबाब के जरिए से काम करवा देते हैं, लेकिन बगैर असबाब के काम नहीं करते, ठीक है। तो उसके असबाब खुद ब खुद जमा कर देते हैं, इसलिए तलाश यूसुफ के लिए भी गैर शऊरी तौर पर मिस्र ही का सफर मुनासिब था। अब असबाब बना देने का मतलब ये भी है कि भाई किसी को प्यास लग रही थी, उसकी प्यास बुझानी थी तो सामने जो है ना वो पानी आ गया, ठीक है, पानी नजर आना शुरू हो गया। और असबाब बनाने का मतलब ये भी है कि जिसको प्यास लग रही थी तो उसके दिल में डाला कि तुम इस तरफ का सफर इख्तियार कर लो, उस तरफ का सफर इख्तियार करने की बजाय इस तरफ का सफर इख्तियार कर लो, उसके दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी। अब इस तरफ पानी मौजूद था, सामने पानी आ गया। अगर अल्लाह ताला इसको प्यासा मार देना चाहते तो इसके लिए इस तरफ का सफर इख्तियार करने का आइडिया डालने की बजाय उस तरफ का सफर करने का आइडिया डाल देते, उस तरफ पानी था ही नहीं तो ये सफर में मर जाता जाकर के प्यास से, ठीक है ना। तो दिलों के अंदर ख्याल डालना या जहन में सोच डालना ये भी असबाब बनाना ही कहलाता है, ठीक है ना, ये भी असबाब बनाना ही कहलाता है। अल्लाह ताला इस तरीके से असबाब बनाते हैं किसी इंसान के जहन में कोई ख्याल डाल करके या किसी जानवर के जहन में कोई ख्याल डाल करके कि भाई जानवर
अम्मा
चलता चलता
पूरा
वो उस जानवर की किसी काम से कोई काम था, जानवर के दिल में डाल दिया कि उस तरफ चलो जिस तरफ मेरा वो बंदा मौजूद है जिसकी तुम्हें जरूरत है, ठीक है ना। ये जो शहद की मक्खी है उसको अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमा दिया, वो जानवर है ना, ठीक है, एक एक यानी हैवानात या कीड़े मकोड़े की उसमें आती है, तो उसके दिल में अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमा दिया कि भाई तुम जाओ ऐसे ऐसे फूलों का रस चूसो और उसको जो है वो ले जाकर के अपने छत्ते के अंदर जमा करो, मेरे इंसान बंदे जो है ना वो आकर के तुम्हारे छत्ते में से शहद हासिल करेंगे। तो इल्हाम अल्लाह ताला इंसान के दिल में डालें, इल्हाम अल्लाह ताला चूटी के दिल में डालें, किसी शहद की मक्खी के दिल में डालें या किसी और के दिल में डालें, ठीक है। तो असबाब अल्लाह ताला कोई मसला नहीं है अल्लाह ताला के लिए ये काम करना। इसलिए तलाश यूसुफ के लिए भी गैर शऊरी तौर पर मिस्र ही का सफर मुनासिब, और गल्ले की जरूरत भी थी, और ये बात भी थी कि गल्ला तलब करने के बहाने से अजीज मिस्र से मुलाकात होगी और उनसे अपने भाई बुनियामीन की खुलासी के मुतालिक अर्ज मारूस कर सकेंगे, ठीक है। क्या आम इंसानों को भी इल्हाम होता है? क्या आम इंसानों को भी इल्हाम होता है? भाई इंसान क्या है, अशरफुल मखलूकात, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, काफिर भी इंसान ही है ना भाई। तो आम इंसान से आपकी मुराद फिर कौन है? अशरफुल मखलूकात तो आम इंसान भी है और अमरूद इंसान भी है और अंगूर इंसान भी है, राइट। आजकल आमों का सीजन है ना, तो इस वजह से हम तो आम को आम ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आम इंसान हो या खास इंसान हो, नेक इंसान हो या बदतर इंसान हो, चाहे जो भी है तो अशरफुल मखलूकात ना। तो जब अभी आपने सुना कि शहद की मक्खी और चूंटी के दिल में अल्लाह ताला इल्हाम फरमा रहे हैं, तो अशरफुल मखलूकात चूंटी और शहद से, शहद की मक्खी से ज्यादा अफजल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो उसको जब इल्हाम हो रहा है तो फिर इसको क्यों नहीं इल्हाम होगा। बहरहाल फलम्मा दखलू अलैहि कालू, यानी जब बरादरान यूसुफ वालिद के हुक्म के मुताबिक मिस्र पहुंचे और अजीज मिस्र से मिले, तो खुशामद की गुफ्तगू शुरू की, अपनी मुहताजी और बेकसी का इजहार किया कि ए अजीज हमको और हमारे घर वालों को कहत की वजह से सख्त तकलीफ पहुंच रही है, यहाँ तक कि अब हमारे पास गल्ला खरीदने के लिए भी कोई मुनासिब कीमत मौजूद नहीं है। असल में कशफो इल्हाम का जो टर्म है ना, वो हमारे मुहावरे में इस्तेमाल होती है वलियों के लिए। कशफ व मुहावरा के जो टर्म है ना, ये इसका इस्तेमाल जो है ना वो औलिया अल्लाह की किस्सों के अंदर हमें नजर आता है। हालांकि अगर हम कुरान मजीद उठा करके देखें ना, तो कुरान मजीद के अंदर जो है वो औलिया अल्लाह के किस्से तो हैं ही, नबियों के किस्से तो हैं ही, वहां पर तो काफिरों के भी किस्से हैं, और वहां पर तो कुरान मजीद के अंदर तो अल्लाह ताला ने हैवानों के भी किस्से रखे हुए हैं, राइट, और मक्खियों के भी किस्से रखे हुए हैं और चूटियों के भी किस्से रखे हुए, ठीक है। तो अगर कुरान मजीद से हम अपनी डेफिनेशंस लें तो बात ज्यादा आसान हो जाती है कि इल्हाम का जो लफ्ज है ना, वो सिर्फ वलियों के लिए नहीं है, वो चूटियों के लिए भी है, वो मक्खियों के लिए भी है, ठीक है। लेकिन हमारा कुछ मिजाज बना हुआ है, जो कि कुछ किस्से कहानियां वगैरह हमने पढ़ ली होती हैं, तो फिर बस वही औलिया होंगे तो इल्हाम होगा, वरना तो इल्हाम नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जितनी साइंसी इजादात वगैरह हैं ना, न्यूटन ने कोई कोई लॉ ऑफ मोशन बना दी, तो आइंस्टाइन ने जो है वो कोई और जो है वो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, और फलाने ने पता नहीं कौन सी जहाज बना दिया, राइट बरादरान ने, तो ये जो कुछ उन लोगों ने बनाया, ये सारा का सारा इल्हाम की बुनियाद पे बनाया है। सारी ईजादा, सब सारी यानी क्या कहते हैं डिस्कवरीज, ठीक है ना, ये सब का सब इल्हाम की बुनियाद पर है। किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो खुद से अल्लाह की तरफ से इल्हाम किए हुए बगैर वो एक एक छोटी सी यानी कील भी बना सके, एक पिन भी बना सके। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम की बुनियाद पर इंसान ने काम किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे घर वालों को कैद की वजह से सख्त तकलीफ पहुंच रही है, यहां तक कि अब हमारे पास गल्ला खरीदने के लिए भी कोई मुनासिब कीमत मौजूद नहीं है, हम मजबूर होकर कुछ निकम्मी चीजें गल्ला खरीदने के लिए ले आए हैं, आप अपने करीमाना इखलाक से इन्हीं निकम्मी चीजों को कबूल कर लें और उनके बदले में गल्ला पूरा इतना ही दे दें जितना अच्छी कीमती चीजों के बिल मुकाबिल दिया जाता है। ये जाहिर है कि हमारा कोई इस्तेहकाक नहीं, आप हमको खैरात समझकर दे दीजिए। बेशक अल्लाह ताला खैरात देने वालों को जजाए खैर देता है। ठीक है, अब यहां पर जो है ना, वो दोनों एहतमालात हो सकते हैं कि वाकई इनके पास अब माल पैसा बाकी नहीं बचा था, कोड़ियों को मोहताज हो गए थे, बस जो है ना वो कोई निकम्मी चीजें उठा करके ले आए थे और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर रहे थे, अजीज मिस्र के सामने। ठीक है, और यानी बिल्कुल ही जैसी हकीकत थी वैसे ही बयान फरमा रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास खोटे सिक्के हैं, हमारे पास निकम्मी चीजें हैं, या ये कि ये अपना केस बना रहे थे, ये अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि लेके तो जो भी आए थे चीजें इनके पास मौजूद थी, बिल्कुल ही यानी खाली दामन उठ करके नहीं आ गए थे, इनों के पास माल पैसा था, लेकिन ये यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी अजीज मिस्र की हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे अपना केस स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनका मकसद क्या था कि उनके दिल को अपने लिए नरम करना और अपना मकसूद हासिल करना, यानी बुनियामीन को हासिल करना। ठीक है, जिसका कि उनके वालिद ने इनको हुक्म फरमाया, यहां पर ये अपने वालिद मोहतरम का हुक्म मान रहे थे, हुक्म के ताबे होकर के ये सारे के सारी जो है ना वो कोशिशें कर रहे थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जब तक इंसान कंगाल ना हो उस वक्त तक वो आजिज नहीं हो सकता, वो आजिजी और इनके सारी इख्तियार नहीं कर सकता। ठीक है कि भाई मेरे पास तो इतना सारा पैसा है, मैं जो हूं वो आजिजी कैसे इख्तियार करूं। भाई इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग, ये आपकी सोच के ऊपर मुनहसर है कि आपके पास माल पैसा बेशक बहुत ज्यादा है, आपके पास बेशक बहुत अकल है, आप बड़े जबरदस्त किस्म के फैसले करते हैं, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे असबाब मौजूद हैं, लेकिन जब मांगने का मुकाम आए, जब किसी बड़े के सामने आप खड़े हो ना, तो उस वक्त अपने असबाब के ऊपर नजर मत करें, अपने असबाब के ऊपर नजर मत करें, अपनी अकल, अपनी सलाहियत, अपने माजी के कारनामे, अपना बैंक बैलेंस, अपनी डिग्रियां, इनके ऊपर नजर मत करें, बल्कि बड़े के ऊपर नजर करें कि उसके मुकाबले में मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपनी नफी करना इसको कहते हैं, यानी है सब कुछ लेकिन उसकी नफी कर रहे हैं। यानी कहने का मकसद क्या है कि भाई ये नहीं कि जब तक मेरे पास से सब कुछ खत्म हो जाएगा उस वक्त तक मैं नफी नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम सच अ ग्रेट यानी ऑनेस्ट पर्सन, राइट। ऐसे मौके पर ना शैतान बड़ा सच सच्चा बनाता है इंसान को, शैतान है ना, शैतान वो दज्जाल का भी बाप है वो, राइट। दज्जाल क्या है, धोखा है ना, सबसे बड़ा धोखेबाज दज्जाल, तो क्या वो इबलीस से भी बढ़कर के है? नहीं, वो तो इबलीस का एक पुर्जा है, वो तो इबलीस का एक एक यानी एक टूल है खाली। तो टूल जो है वो असल से बढ़ के कोई थोड़ी हो सकता है। तो दज्जाल का जो दजल है वो इबलीस के दजल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इबलीस के दजल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो हम सोचें कि आजकल माशाल्लाह जिन लोगों को फिक्र पड़ी है, ठीक है ना, तो वो बहुत दजाल 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 है ना, दजाल का फरेब, दजाल का फितना, फितने दजाल, फितने दजाल, राइट। और करना भी चाहिए, ये भी नहीं हम कह रहे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह के बंदे दजाल तो अभी तक आया भी नहीं, वो तो आएगा जब आएगा, ठीक है ना। और अगर फितने दजाल जो है वो शुरू हो चुका है, जैसे कि मशायख से हम आजकल यही सुन रहे हैं, तो कितना पहले शुरू हुआ, 400 साल पहले शुरू हुआ, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 400 साल पहले, और उसकी भी जो इंटेंसिटी है वो पिछले लगता है कि 15-20 साल के अंदर इंटेंसिटी जो है ना वो बढ़ गई है। इबलीस कब से मौजूद है, इबलीस कोई 15-20 साल पहले पैदा हुआ है, इबलीस कोई 400 साल पहले पैदा हुआ है, इबलीस तो लाखों साल पहले से मौजूद है। राइट। और अगर आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक को हम अपने हिसाब हिसाब से यानी देखें तो पता नहीं 7,000 साल बनते हैं या कोई 20,000 साल बनते हैं, कुछ इतने हैं। तो इबलीस, जो इबलीस बना, तो वो तो आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक के वक्त से मौजूद है, और वो दज्जाल तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, ठीक है ना। तो इबलीस के धोखों से बचना ये असल बड़ा मसला है, कि दज्जाल के धोखे से बचना असल बड़ा मसला है। और इबलीस तो आज भी मौजूद है, और हम सबका वास्ता इबलीस से पड़ रहा होता है। दज्जाल का वास्ता तो पता नहीं किससे पड़ेगा किससे नहीं पड़ेगा, हमें पता भी नहीं कि हम उस वक्त जिंदा भी होंगे कि नहीं होंगे, राइट। हमें पता है कि हम जिंदा होंगे जब दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएगा, हमें तो नहीं पता। इबलीस तो अभी मौजूद है ना, उसने तो अल्लाह ताला से ढील ली हुई है ना, और वो तो हम सबके खिलाफ अपनी साजिशें, अपने धोखे, अपने फरेब इस्तेमाल किए चला जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये इबलीस, इसका मकरो फरेब जो है ना, ये असल मकरो फरेब है, और ये हर वक्त मौजूद है, यानी दुनिया की जिंदगी के अंदर ये मौजूद है। हाँ, ये कब्र के अंदर इबलीस नहीं होगा, आलम बरजख में नहीं होगा, कयामत के दिन जो है वो होगा, तो उस वक्त जो है ना वो धोखा देने के काम करेगा ही नहीं उस वक्त। उस वक्त तो सारा जो है ना वो सारी मलामत हमारे ऊपर वापस लौटा देगा, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। कयामत के दिन इबलीस का और कोई फंक्शन नहीं होगा, सारा फंक्शन धोखे वाला, तो वो तो इस दुनिया की जिंदगी के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बड़ा खबीस है, इबलीस सबसे बड़ा खबीस है। तो ना जिस वक्त जो है ना वो जो चीज हमें फायदा देती है ना, उस वक्त कहता है नहीं ये तुम ये क्या कर रहे हो तुम, राइट। जिस वक्त हमें सच बोलना था, उस वक्त कहता है नहीं झूठ से काम चलाओ, और जिस वक्त हमें सच नहीं बोलना था, उस वक्त कहता है सच बोलो, उस वक्त सच बोलो, क्या मतलब ना, जब सच नहीं, जब सच बोलना था उस वक्त तो कहता है झूठ बोलो, काम निकालो अपना, झूठ बोल बोल करके लोगों को उल्लू बना बना करके काम निकालो। और जिस वक्त सच नहीं बोलना था, क्या मतलब सच नहीं बोलने वाला, मतलब समझ गए होंगे इंशाल्लाह आप लोग सारे, अल्लाह ताला के सामने जब अपने आप को पेश करते हैं ना, अल्लाह ताला से जब मांगते हैं, तो उस वक्त जो है ना वो क्या है, अकल भी है, शक्ल भी है, माल भी है, इल्म भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह के सामने जब मांगते हैं, ए अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह आई डोंट हैव एनीथिंग, ए अल्लाह मैं किसी काम का नहीं, ए अल्लाह मुझे कुछ करना नहीं आता, तो क्या है ये, बजाय तो ये सच नहीं है ना, आता तो है आपको बहुत कुछ करना, लेकिन अल्लाह के सामने ए अल्लाह कुछ करना नहीं आता, ठीक है। उस वक्त शैतान कहता है ये तुम क्या झूठ बोल रहे हो, अल्लाह के बंदे झूठ, अल्लाह से झूठ, राइट, अल्लाह से झूठ बोल रहे हो। तो ये जो थे ना, ये बड़े के सामने जा करके ना अपने आप को छोटा बना करके पेश कर रहे थे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, खोटे सिक्के हैं, और हमारे ऊपर जो है बहुत मुसीबत आ गई है, और ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है। तो खैर हाल, ये दोनों एहतमाल हो सकते हैं, पहला एहतमाल भी हो सकता है कि वाकई इनके बहुत बुरे हालात हो चुके थे, दूसरा एहतमाल भी हो सकता है कि नहीं, दे हैड बीन गिवन अ टास्क बाय देयर फादर, इनके अब्बा ने इनको जो है ना वो एक काम दे करके भेजा था, अब उस काम को करने के लिए जो है वो इस किस्म के जो है वो तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब आगे मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये जो निकम्मी चीजें उन्होंने कहा ना, तो ये निकम्मी चीजें थी क्या, तो कुरान और हदीस में इसकी कोई तसरीह नहीं है। मुफस्सिरीन के अकवाल मुख्तलिफ हैं, बाज ने कहा कि खोटे दराहिम थे जो बाजार में ना चल सकते थे, बाज ने कहा कि कुछ घरेलू सामान था। ये लफ्ज मुजातिन का तर्जुमा है, इसके असल मानी ऐसी चीज के हैं जो खुद ना चले बल्कि उसको जबरदस्ती चलाया जाए, ठीक है। जैसे कि पीछे भी बात हुई थी कि इन्होंने इस तरीके से जो है वो अल्लाह ताला ने इनका वाकया बयान फरमाया और हमें दुआ मांगने का सलीका सिखला दिया, ठीक है। क्योंकि कुरान मजीद किताब हिदायत है, हम इसमें से क्या हिदायत हासिल करते हैं, ये नहीं कि हमें जो है वो हमारी नॉलेज बढ़ गई कि जी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, फिर उनके भाइयों ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, फैक्ट्स जो है वो हमारे नॉलेज बेस के अंदर ऐड हो गए भाई, अब हम कल को लोगों को सुनाएंगे कि जी मुझे भी पता है कुरान मजीद में ये लिखा था और मुझे भी पता है कि उसने ये कहा था उसने ये कहा था। नहीं, किताब हिदायत का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इससे बड़े से मांगने का तरीका सीखना है, बड़े से मांगने का। अब इसमें सबसे बड़ा भाई बड़ा होता है और हमसे बड़ा भी बड़ा होता है, यानी अपने मशायख के सामने जाएं, तो मशायख के सामने जाते हैं ना तो बात करने की तमीज सीखनी होती है उसके, ठीक है ना। बादशाह के पास जाएं तो बादशाह के पास बात करने की तमीज आनी चाहिए, कैसे बात करनी है अपने बादशाह से, अपने उस्ताद से बात करें हो तो उस्ताद से बात करने की तमीज सीखें, राइट। माँ बाप से बात करें हो तो माँ बाप से बात करने की तमीज सीखें। ये अलबत्ता एक ऐसा एरिया है जो कि सबको पता है, माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए, उस्ताद शेख राइट, या अल्लाह ताला के सामने दुआ कैसे मांगनी, ये नहीं है हमारे दीन वीन का हिस्सा, हमारे दीन वीन का जो है ना ये हमारा हिस्सा नहीं है। हाँ माँ बाप वाला वो दीन का सबसे अहम जो है, बल्कि शायद वही दीन है सारा का सारा। बहरहाल माँ बाप भी बड़े ही होते हैं ना, माँ बाप से भी बात करने की तमीज वो भी इसके अंदर शामिल है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ों से बात करने की तमीज सिखला दी, ठीक है। काश अल्लाह ताला हमें तौफीक भी अता फरमा दे कि हम सीख भी लें उसको। भाई हम बात कुछ कर रहे थे आपको ना अटके हुए अभी तक इल्हाम के अंदर, नहीं ये तो गलत बात है ना, बात कुछ हो रही है आप जो है वो इनाम के पीछे पड़े हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों के ये मस्कनत आमेज अल्फाज सुने और शिकस्ता हालत देखी तो तभी तौर पर अब हकीकत हाल जाहिर कर देने पर मजबूर हो रहे थे, और वाकयात की रफ्तार का अंदाज ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो इजहार हाल की पाबंदी मिन जाने बिलदा थी अब उसके खात्मे का वक्त भी आ चुका था। और तफसीर कुर्तुबी मजहरी में रिवायत का, खैर ये एक खत है जो कि इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के मस्कनत आमेज अल्फाज सुन, मस्कनत आमेज अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज थे जिनके अंदर जो है ना वो कमजोरी और आजिजी इनकी सारी थी, तो इन अल्फाज का असर हो, अल्फाज का असर होता है सुनने वाले के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से अब सुनने वाला यहां पर दुनियावी एतबार से बड़ा था ना, अजीज मिस्र था, लेकिन नहीं, अल्फाज का चुनाव इवन दुनिया दीनी एतबार से जो बड़े होते हैं ना उनके साथ भी अल्फाज का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी पीछे भी बात हुई थी मशायख के सामने हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, असातजा इकराम के सामने कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के सामने कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं उठा करके हम देखें, मसनून दुआएं, आका अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक व मालिक के सामने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, राइट, मस्कनत आमेज अल्फाज, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी, ताइफ के मौके पर कैसी दुआ मांगी, हर हर दुआ नबी अलैहिस्सलाम। इसी वजह से हमारे कुछ मशायख तो फरमाते थे कि दुआ मांगना है ना अल्लाह ताला से तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के मसनून अल्फाज इस्तेमाल करके दुआ मांगो, अपनी तरफ से अल्फाज इस्तेमाल ही ना करो, अपने अल्फाज इस्तेमाल ही ना करो, क्योंकि उनसे ज्यादा मस्कनत आमेज और उनसे ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत को प्रोवोक करने वाले, इनवोक करने वाले, बल्कि इनवोक करने वाले अल्फाज और बेहतर हो ही नहीं सकते जो नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है। हमारी मुसीबत यह है कि हमें अरबी जुबान आती नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कि ये जो अल्फाज है इनका मतलब क्या है। और उसूल दुआ का ये है कि जो जब तक आपको पता नहीं है कि आप क्या मांग रहे हैं आपकी दुआ कबूल ही नहीं होती, तो या तो अरबी जुबान अच्छी तरीके से सीख लें ताकि नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज से दुआ मांगे और ऐसे मांगे कि पता भी हो कि क्या मांग रहे हैं, या फिर ये भाई उर्दू जुबान ही रह जाती है उसके बाद। तो अब उसके बाद दूसरा दर्जा ये है कि हमारे मशायख जैसे उर्दू जुबान के अंदर दुआ मांगते हैं ना, हम उनसे सीखें कैसे दुआ मांगना चाहिए, क्योंकि अल्फाज अहम होते हैं। हमारे हजरत की दुआएं सुने आप, ओहो क्या जबरदस्त अल्फाज से अल्लाह ताला को पुकारते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हो गया अल्फाज, दूसरी चीज फरमाई शिकस्ता हालत, हालत भी शिकस्ता, इसका भी असर होता है। सूरह कहफ के अंदर जो वाकया है ना कि जो असहाबे कहफ 300 साल 350 साल के बाद जो उठे ना, तो उस जमाने में मुसलमान बादशाह था ना, उस मुसलमान बादशाह ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे जो अवाम है ना वो आखरत के बारे में शक में मुबतला हो रहे हैं। कोई कोई सबब आप बना दें, कोई सबब बना दें कि मेरी आवाम गुमराह ना हो जाए। तो उसने जो दुआ मांगी, तो किताबों में लिखा है, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने नहीं, सूरह कहफ की तफसीर में लिखा है, उसको नकल किया है कि उसने अपना बादशाही लिबास उतारा, फकीरों वाला लिबास पहना, और किसी मुकाम पे जहां पर राख का ढेर था वहां पे जाकर के बैठ गया, अपने सर के अंदर उसने मिट्टी और राख डाली, यानी अपनी हालत ऐसी बनाई, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करी। और देखिए उसकी दुआ का असर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने 300 साल से सोते हुए असहाबे कहफ को बेदार कर दिया, और उन असहाबे कहफ के साथ जो एक्सपोजर हुआ उसकी कौम का, उनका ये अकीदे का मसला हल हो गया सारा का सारा। पूरी कौम के अकीदे का मसला इस बादशाह की दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने चुटकी बजाते हुए हल कर दिया। क्या मुश्किल है अल्लाह ताला के लिए हमारे मसाइल को हल कर देना, राइट? लेकिन दुआ मांगने का सलीका सीखना, हम सलीका सीखें, हम तरीका सीखें, हम अल्फाज सीखें, हम वो कैफियत सीखें कि अपने परवरदिगार से कैसे काम करवाना है। एटम बम नहीं बनाने पड़ेंगे फिर उसके बाद, एटम बम नहीं बनाने पड़ेंगे। अल्लाह जुदाए खैर दे हमारे मशाय को। एक बात यानी वसीयत बशकले नसीहत बशकले वसीयत सुन ले, कल ही आजिज जो है वो सफर करके मक्का मुकरमा से वापस पहुंचा, तो रास्ते में ना हजरत मौलाना मक्की हिजाजी दामत बरकात, अल्लाह ताला उनको उनकी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए, पिछले दिनों किसी ने उनकी मौत की झूठी खबर जो है वो वायरल कर दी कि उनका इंतकाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो उनका जो है ना वो सीरत नबी का ये कैसेट, ये आज सुन रहा था, 9th CD, 9th CD, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या उन्होंने जबरदस्त नुकात उसके अंदर बयान किए मुसलमान के लिए, राइट? अल्लाह ताला की कुदरत मुसलमान के लिए कैसे काफी शाफी है, उसका ईमान उसके लिए काफी है, करना तो सबका सब अल्लाह ताला ने। शैतान ने हमें जो है ना वो घोड़े पालने के बहाने जो है ना वो कुरान मजीद के हुक्मों को भी तो शैतान अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है ना, ये तो शैतान है, ये तो दज्जाल का भी जो है वो यानी दादा है ना ये तो। हाँ भाई कुरान में है, घोड़े पालो घोड़े पालो घोड़े पालो, घोड़े क्या पालने थे, ईमान का ही सत्यानाश करके रख दिया घोड़े पालने के हुक्म के चक्कर में, शैतान ने करवा दिया ईमान का सत्यानाश करवा, ठीक है भाई? पहले ईमान बनाना था, घोड़े बाद में पालने थे अल्लाह के बंदे। मुसीबत जो है ना वो शैतान के रास्ते पे चलोगे तो यही होता है, पहले घोड़े पालो, ईमान की देखी जाएगी, ईमान की देखी जाएगी, बाद में ईमान बनाते रहेंगे। धोखा, इबलीस का धोखा घोड़े पालने के ऊपर लगा दिया, तरतीब बदल दी ना इसने कमबख्त ने, और हम जो है वो क्या बोले अपने आप को, हम हमसे ज्यादा जो है वो सादा लोग कोई नहीं होगा, हमसे ज्यादा जो है ना वो भोले बादशाह कोई नहीं होंगे, तरतीब बदल दी और हम जो है वो कुरान का हुक्म पूरा करने के चक्कर में जो है ना वो कुरान का जो असल हुक्म था ना उसको भूल गए, और जो फरूई हुक्म था असल को भूल गए और फरुआत के अंदर लग गए, फरुआत के अंदर लग गए, फरुआत समझते हैं ना, ब्रांचेस, ट्रंक को भूल गए, ब्रांच में लग गए। अल्लाह के बंदे पहले ट्रंक आता है कि पहले ब्रांच आती है, पहले ट्रंक आती है पहले ब्रांच आती है, ये है शैतान, ये है इब्लीस, CD नंबर 9। जज़ाकुम माशाल्लाह, आपने भी सुनी हुई है, हमने भी कल CD नंबर 9 ही सुनी थी, ठीक है CD नंबर 9, 30 है ना शायद उस सिलसिले में। बात को अल्लाह ताला ना सारे दुआ करनी चाहिए, अल्लाह बात की समझ अमल की तौफीक, अलहमदुलिल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.